Grant Raj Srimad Bhagavatam Dvitiya Skand Tritiya Adhyay or 24 Slok Sankhya 24 huh? Masaram Ridayam Batedam Yad Griya Manair Harina Madhiyai Navikriyeta Thayada Vikaro Netre Jalam Gatra Ruheshu Harshaha Tadasmasaram Hridayam Batedam Yad Grihyamanair Harinam Adhiyai Nabhikriyetath Yada Vikaro Netre Jalam Gatra Ruheshu Harshaha Anubad or Tatparya Srila Prabhupada Dvara Srila Prabhupada Ki Nishay Hi Vaha Hriday Faulad Ka Bana Hai जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता जब हर्ष होता है तो आंखों से आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते हैं अनुवाद को फिर से सुनिए निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है फौलाद जानते हैं Steel, steel framed, stone hearted. मतलब कठोर, बड़ा कठिन. एक तो होता मक्खन, बड़ा मृदु होता है. और फिर फौलाद, फौलाद की जो औलाद है. या बंदरों की डार्विन की जो औलाद तो एकाग्र होकर निश्चय ही हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता हर्ष जब हर्ष होता है तो आंखों से आंसू नहीं भर आते और शरीर में रोम रोम खड़े नहीं हो जाते हैं तीन पृष्ठों का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद दिए हैं निश्चित ही ये महत्वपूर्ण श्लोक होना चाहिए या कहे हुए वचन कुछ विशेष होने का कुछ अनुमान ही हम लगा सकते हैं जब देखते हैं कि इतने कई सारे पन्नों में श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य अपना भावार्थ भाव प्रकट किए हैं हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंध के प्रथम तीन अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा ध्यान श्रील प्रभुपाद आकर्षित कर रहे हैं इस द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्यायों की ओर प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है और नव दीक्षितों के लिए भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल धारणा की संस्थिति की गई है ईश्वर की ऐसी स्थूल धारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य का मन तथा इंद्रिया आध्यात्मिक बनती है और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है जो परमात्मा में स्थित है। इसीलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप में लाई जाती है, जिसमें पांच मानसिक प्रवृत्तियों की संस्थिति की जाती है। यह है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि विद्युत सूर्य जीव भगवान शिव तथा निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकती है। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है। तो प्रथम अध्याय में क्या, द्वितीय अध्याय में क्या हुआ, ये इसका संस्मरण दिलाने के उपरांत श्रील प्रभुपाद अब तृतीय अध्याय की चर्चा करेंगे। किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात भक्ति में प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की प्रौढ़ अवस्था का वर्णन है, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 1971 में मुझे स्मरण आया इस बात का कि श्रील प्रभुपाद इसी स्कंद के प्रथम तीन अध्यायों को एक एक अध्याय का एक पुस्तिका बनाई थी और उसका वितरण हो रहा था। ये द्वितीय स्कंद है ना, प्रथम स्कंद को तो प्रभुपाद साथ में ले ही गए थे जब वे गए न्यूयॉर्क। तो वहां पहुंचने पर उन्होंने और स्कंदों का अनुवाद और तात्पर्य लिखना प्रारंभ किया। तो 1971 में अभी अभी आए थे प्रभुपाद अमेरिका में कई वर्ष बिता के। तो जो पंडाल प्रोग्राम हो रहा था क्रॉस मैदान में, जो पुनः अब अगले महीने होने जा रहा है, उसी पंडाल का हमें स्मरण दिलाने हेतु श्याम सुंदर प्रभु जो प्रभुपाद के निजी सेवक उस वक्त भी थे आज भी है, तो वही उसका आयोजन कर रहे हैं। तो मुझे आज याद आ रहा था कैसे एक एक चैप्टर का एक पुस्तक छोटा सा पुस्तिका बनाए थे, लॉर्ड इन द हार्ट एंड फर्स्ट स्टेप्स इन गॉड रियलाइजेशन चेंज ऑफ हार्ट, ऐसे उसके अलग अलग टाइटल्स, जो चैप्टर का टाइटल था वही उस पुस्तक का भी टाइटल, छोटे छोटे पुस्तक थे। आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है। अब तीन अध्यायों की संक्षिप्त चर्चा के उपरांत प्रभुपाद एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं। आप सुन रहे हो, सुनो कभी कभी सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं राजा परीक्षित, सुनो सुनो राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित तो कुछ उनको तो झपकी या डुलकी लगने की संभावना ही नहीं है। तो भी ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि अब तुम सुन तो रहे ही थे, लेकिन अब कुछ अधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। सुन रहे हो? तो प्रभुपाद और महत्वपूर्ण बात यह कहने जा रहे हैं, आप सुनना चाहोगे? आराम से बैठो, सीधे सावधान। ऑन ड्यूटी जब होता है तो पुलिस क्या करता है पता है, उनका जो बेल्ट जो ढीला होता है वो टाइट करता है, ऑन ड्यूटी होने से वो टाइट करता है। भगवान भी जब कालिया को मारने के लिए कूदने ही जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपना बेल्ट क्या किया, फेटा कस लिया और फिर कूदे उस। तो सावधानी से कार्य करना है तो फिर ढीला ढाला काम नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे तो शवासन की तरफ हम लोग, शवासन, ध्यान के लिए पद्मासन, फिर निद्रा के लिए शवासन। तो आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में माने, क्योंकि यही उसकी शाश्वत स्वाभाविक स्थिति है। बहुत बड़ा सिद्धांत सार ही कहे प्रभुपाद इन तीन पंक्तियों में। इस तरह भक्ति की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुता दिखाने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति, हृदय में परिवर्तन का प्रदर्शन मतलब कुछ एग्जीबिशन, ताकि बुला के देखो देखो तो मेरे सारे भाव और विकारों को तो देखो, या सायंकाल के सायंकालीन सत्र में दिखाऊंगा आप सभी आ जाओ, ऐसी बात नहीं है। सब प्रदर्शन, भक्त तो उस पर रोकथाम लगा ही नहीं पाता। आचार्यगण प्रयास तो करते हैं ताकि जनसाधारणों के समक्ष ये प्रदर्शन नहीं हो। इसका दर्शन तो भगवान के दर्शन प्रदर्शन के लिए, या कोई देखे या न देखे तो प्रदर्शन अपने लिए, भगवान के लिए, भगवान के कुछ अंतरंग भक्त देख सकते हैं। तो ऐसा हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन और विरक्ति तथा भगवान के प्रेमा भक्ति करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है, ये प्रगति के लक्षण। यहां पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा, आंख नाक कान हाथ पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है, की गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि नियमित भक्ति करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। नियमित मतलब नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति हर रोज, या हर रोज नहीं हर क्षण। वैसे विधि तो पूरी पूरा सत्य अगर कहना है तो हर रोज भक्ति करके नहीं चलेगा, हर क्षण सदैव। आगे की तात्पर्य प्रभुपाद लिखने वाले हैं, अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाना। जैसे गोपियां ही हमारे आदर्श है भक्ति की, तो उनका सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित, लेकिन वहां पहुंचने के लिए वो तो अनुरागानुग भक्ति। तो यह नियमित भक्ति से वैधि भक्ति या विधि पूर्वक की हुई भक्ति का भी जिक्र होता है। कई लोग वैसे कहते हाँ हम बड़े रेगुलर मंदिर में आने में बड़े रेगुलर है, हर साल की जन्माष्टमी में आते हैं, रेगुलर हो गए कि नहीं, हम बड़े रेगुलर है, हर जन्माष्टमी के बराबर पहुंच जाते हम, और फिर रामनवमी में भी कभी कभी आए जाते हर साल, तो ये भी रेगुलर तो हो ही गया। वंस ईयर भी रेगुलर हुआ, ये हमारे ईसाई बंधु हर रविवार को जाते हैं, दैट इज ऑल्सो रेगुलर। वंस अ वीक इज रेगुलर, एवरी मॉर्निंग हर प्रातःकाल भी रेगुलर है। या कुछ लोग तो हम तो बड़े ही रेगुलर है, जब उठते हैं तो दो मिनट तो भगवान को ही दे ही देते हैं, और फिर विश्राम के पहले रात्रि को और दो मिनट का, लो भगवान और दो मिनट भी तुम्हारे लिए, दो और दो कितने हो गए, चार मिनट, खुश हो जाओ। तो ये भी रेगुलर हुआ, लेकिन रेगुलर होते 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 अव्यर्थ, क्या अव्यर्थ कालत्वम, हर क्षण की बात। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति माए, एक बीच में बात छूट गई, यदि परिवर्तन नहीं आता है तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। लेकिन प्रभु की कथा गाथा और प्रभु का नाम में वो शक्ति है हृदय को पिघाल देने की, शक्ति है। पशु पाखी झूरे पाषाण बीदरे सुनि जर गुण गाथा। गौरांग महाप्रभु की गुण गाथा कैसी है, कैसी है? पशु पाखी झूरे, पशु है, पाखी मतलब पंछी है, पक्षी है, वो भी क्या करेंगे, झूरते रहेंगे, जैसे तुम झूर रहे हो, इसको झूरना कहते हैं। जब मंत्र मुग्ध या तल्लीन होता है व्यक्ति तो झूरने लगता है। तो पशु पाखी झूरे और पाषाण विदरे, पाषाण भी पिघल जाता है। सुनी जर गुण गाथा, हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत है, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। तो भक्तों का हर्ष, ये भक्त हर्ष का अनुभव कर रहा है तो कैसे पता लगवा सकते हैं? एक तो हुआ द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं, हमारा जो चेहरा है हमारे मन या हृदय का एक आईना है, आदर्श है, दर्पण, वेरी गुड, थैंक यू। तो हुआ तो हमारा हृदय या मन को देखा जा सकता है, कहां पर, चेहरे पर। वैसे दिल सच्चा और चेहरा झूठा की बात है, हम लोग बड़े चालू बने हैं इस कलयुग में, और हम अंदर है वैसे बाहर नहीं दिखाते अपने को, लेकिन जो सरल व्यक्ति है, सीधा भोला भाला या भोली गोपिया है, तो जैसे वे अंदर रहते वैसे बाहर भी अपने को वैसे ही प्रकट करते हैं, जैसे है। तो वह ऐसे व्यक्ति का मन अगर वो हर्षित है तो हर्ष को प्रकट करेगा। कई लोग दुखी नहीं होने पर भी किसी की मृत्यु हुई तो क्या करते हैं, रोने की भूमिका निभाते हैं, अपने हैंकरचीफ को निकाल के क्या करते हैं, आंसू नहीं होते हुए भी पोंछने लगते हैं, या कभी कभी थूके से अपना उसको गीला भी कर देते हैं, क्या आंखें गीली। तो उनकी बात ये तो पाखंड तो खूब चलता ही है, या हमारे जयपताका महाराज बता रहे थे बंगाल में कई लोग अपने भाव को प्रकट करते हैं, वहां तो खूब भाव को प्रकट करना होता है, बंगाल में तो भाव का ही खूब प्रचार है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, तो लोग खूब भाव का प्रदर्शन, और भाव नहीं है तो फिर कोई उनको पूछता नहीं है, तो क्या भाव है, क्या भाव, बड़ा भाव, ऊंचा भाव। तो जयपता का महाराज बता रहे थे, शायद उन्होंने नोट किया होगा, सुना होगा कि जो कथाकार है या कीर्तनकार है वो कीर्तन करते करते ही थोड़ा मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च थोड़ा सा पोछ लेते हैं, लगा देते हैं आंखों में या थोड़ा नाक में भी, तो ऐसा बढ़िया भाव आ जाता है। फिर आपको आइडियाज दे रहे हैं हम, कुछ लोग सीखते होंगे। तो महाराज बता रहे थे ये चिली भाव हो गया, अंग्रेजी में कह रहे थे ये भाव कैसा हो गया, चिली भाव, मिर्च भाव। तो वैसे इन भावों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये तो शरीर के स्तर पर ही, ये इंद्रियों के स्तर पर ही ये बाहरी लक्षण प्रकट होते हैं। वहां भाव तो जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो ये जो अष्ट भाव विकार जो, या उनके नाम भी प्रभुपाद आगे गिनाएंगे कहेंगे, वो प्रकट होते हैं। गोपियों को कृष्ण को बिल्कुल निकट जाके उनका अंग संग प्राप्त करना संभव नहीं, समाज में ऐसी कोई निषेध है, कुछ नियम है, तो पंचाध्याय का जो पांच अध्याय तो वहां वर्णन आता है कि जिस कुछ गोपियां क्या करते हैं, भगवान को अपने आंख के खिड़की या दरवाजे से अंदर ले जाती है और अपने हृदय प्रांगण में सिंहासन बनाती है, वहां पर प्रभु को बिठाती है और वहां खूब संग प्राप्त करती है, मिलन होता है गोपियों का कृष्ण के साथ अपने हृदय में। और वो क्या करते, भगवान को अंदर ले जाते ही उस खिड़की को दरवाजे को बंद कर देती है, एक तो बाहर के लोग उसको न देख पाए और साथ ही साथ अंदर लाए हुए भगवान भी बाहर जाने थोड़ा कठिन होगा उनके लिए, बंद कर दिया सारे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। और फिर उस स्थिति में जब प्रभु से मिल रही है तो उनका शरीर में रोमांच होता है, उनके चेहरे पर हर्ष और आंखों में प्रेमाश्रु और कई सारी लक्षणों से, हाँ हाँ ये प्रभु को मिल रही होगी तभी तो ये सारे लक्षण हैं, ऐसे और गोपियां फिर अंदाजा करती रहती है। तो ये भाव गोपी भाव, ये भक्ति भाव जब आत्मा परमात्मा का ये सम्मेलन मिलन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये चर्चा का विषय है। प्रभु का नाम हम ले और उस समय लेते लेते या उसका परिणाम उसका फल ये सारे लक्षण, प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, या हरि नाम का और फिर ये कैसे क्या संबंध है, ये रोमांच क्यों होना चाहिए हरि नाम का और क्योंकि हरि नाम ही भगवान है। एग्जैक्टली, क्योंकि हरि नाम ही क्या है, भगवान है। गोपी तो वह मिल ही रही थी, कृष्ण को ही मिल रही थी, लेकिन हम लोग जप या कीर्तन के समय मिलते प्रभु के नाम से हमारा मिलन होता है। और नाम कैसा है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। या कलयुग में क्या होता है, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, नाम भी प्रभु का एक रूप है, भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान का रूप भी एक भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप विग्रह ये भगवान का एक स्वरूप है। तद्वत भगवान का नाम भी एक भगवान का स्वरूप है, और भगवान की लीला भी भगवान का एक स्वरूप ही है, और भगवान का धाम भी भगवान का एक स्वरूप ही है, और प्रसाद भी भगवान का एक, इस प्रकार के कुछ भगवान के स्वरूप है, स्व अपना रूप, भगवान का अपना रूप। भगवान का नाम भगवान का रूप है, स्वरूप है। तो ऐसे भगवान के नाम के संपर्क में आने से भी ये लक्षण प्रकट होने चाहिए, होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर ओ फौलादी, तो भी क्या भक्त तो पीछे हटेगा। फौलादी क्या करना, क्या होगा, कीर्तनीय सदा हरि, अधिक फौलादी औलादी का अगर हृदय है तो क्या करना होगा, अधिक जप करना होगा। किसी का कुछ कम जप में ही पिघल रहा है, लेकिन पिघालना तो है ही हृदय को, नहीं पिघल रहा है तो हुआ, हृदय तो है ही, और हृदय में भगवान तो है। और तो जब तक मिलन हमारा प्रभु के साथ आत्मा का पूरे ध्यान अवस्था में, मंत्र मुग्ध जब हम होंगे, और आगे चर्चा वैसे वो तात्पर्य लिखे हैं, अपराध रहित जब जप करेंगे हम, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम। नाम कैसे लेना है, अपराध शून्य। वैसे हमको अपराध करने की अनुमति है, हम अपराध कर सकते हैं, कितना कितना अपराध कर सकते हैं, शून्य, इतनी ही अनुमति है। अपराध करना है तो कितना कर सकते हो, शून्य तक, इतना करो। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत है, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। हम पढ़े थे इसको, ये प्राकृतिक फल है और भाव दशा में प्रारंभिक लक्षण है जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्णावस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। या प्रेम की अवस्था के पहले ही, जो प्रेम के जो सोपान है, श्रद्धा से कहां तक, प्रेम तक, सीढ़ी में पहली सोपान, पहली सीढ़ी कौन सी है, नहीं, आदव श्रद्धा, श्रद्धा से प्रेम तक। तो सीढ़ी की शुरुआत श्रद्धा से, और लक्ष्य कहां तक, प्रेम। तो एक सीढ़ी कम, अब प्रेम की सीढ़ी तक पहुंच ही रहे हैं, उसके पहले ही ये भाव प्रकट होता है। भाव की पूर्णता है, भाव जब गाढ़ हो जाएगा, अति गाढ़, सॉलिड, दूध को भी उबालते 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 फिर अंत में रबड़ी बन जाती है, को हुआ। तुम हर रोज साधना करते करके हर रोज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम और क्या क्या करके हर रोज नित्यम भागवत सेवया करके हर रोज मंगल आरती में आके मंगल आरती से प्रसाद के समय तक की सारी विधियां पूरी करते करते ये सब हम लोग करते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग, फिर सायंकाल को भी और साधना संध्या आरती भागवत भगवद गीता पाठ और बीच में खूब सेवा। हमारे एक भक्त बता रहे थे ये इस्कॉन का सैंडविच है, सैंडविच सैंडविच में एक ब्रेड नीचे होता है ना, लोफ ऑफ ब्रेड नीचे और एक ऊपर होता है और बीच में टोमेटोज और चीज और सैलड के आइटम्स, उसको दोनों साथ में केवल एक एक केवल ब्रेड ही खाएंगे या केवल अंदर का चीज ही खाएंगे तो उतना स्वाद नहीं आएगा जितना उसको दोनों को साथ में खाएंगे। तो ये भक्ति भी प्रचार का कार्य भी साधना भक्ति के अंतर्गत ही है, ये भी साधना है। तो इसका तो यस, तो हर रोज हम क्या करते हैं ऐसे ये साधना करके मॉर्निंग इवनिंग साधना दिन भर सेवा, सेवा भी साधना है। तो हम लोग अपने चेतना को शुद्ध बनाते हैं या चेतना कोई दूध है मान लो तो उस चेतना को क्या करते हैं हम लोग गाढ़ा बना देते हैं या दूध में थोड़ा जल की मात्रा भी होती है, जल जितना कम होगा दूध अधिक मीठा अधिक गाढ़ा और अधिक रबड़ी की ओर बढ़ता हुआ और फिर अंत में क्षीर चोर गोपीनाथ का जो क्षीर ही बन जाता है। तो ये साधना का फल है या परिणाम है। शुरुआत में जितनी मधुरता अधरम मधुरम, हर बात भगवान की मधुर है, भगवान के लिए की हुई साधना भी मधुर है और भगवान के लिए किए हुए आचार और विचार और प्रचार ये सब क्या है मधुरम। और इसकी मधुरता में कुछ वर्धन बढ़ता ही है, ये मधुरता बढ़ती है प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपश्य, प्रतिक्षण प्रतिदिन प्रतिवर्ष ये मधुरता मीठास बढ़ेगी। नहीं बढ़ रही तो सोचना होगा कोई समस्या, फिर सिंहावलोकन भी करना होगा। सिंहावलोकन, सिंह जैसे अवलोकन करता है, सिंह समय समय पर क्या करता है पीछे मुड़के देखता है, रुकता है पीछे देखता है कहां से कहां तक पहुंचा हूं, आगे मुझे कहां तक पहुंचना है। ऐसे केसरी वनराज वन का राजा सिंह करता है सिंहावलोकन, लेकिन लोमड़ी या खरगोश ये जो पशु होते हैं ऐसा सिंहावलोकन नहीं करते, वे सोचते नहीं जाते रहते कूदते रहते इधर से उधर से उधर से उधर, नो प्लानिंग कुछ नहीं होता। आजकल वो रेड लाइट पर भी चलता है, स्टॉप थिंक भी होगा देन प्रोसीड रिलैक्स, आजकल रिलैक्स मतलब हम रिलैक्स नहीं होते हैं और सोचते नहीं है, जस्ट डू इट क्या करते हैं हम लोग केवल करते ही रहते हैं। हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग, लिविंग कैसा हाई चल रहा है और थिंकिंग no thinking. लो थिंकिंग होता तो कुछ तो लो मतलब थोड़ा था कुछ तो थिंकिंग चल रहा लेकिन नो थिंकिंग सिंपली लिविंग सिंपली केवल जीवन जी रहे तो सोचते नहीं लोग सोच नहीं रहे जैसे सिंहावलोकन करने वाला सिंह सोचता है तो हम लोगों को भी सोचना होगा भक्ति विनोद ठाकुर का ये प्रस्ताव रहा करता था कि हर एकादशी को वो एक दिन है हर दो सप्ताह के उपरांत वो दिन आता है एकादशी का तो पिछले दो सप्ताह का अवलोकन साधकों को करना चाहिए हम कहां से कहां तक आए और हमने स्कोर तो करना ही है बाय द वे आप सबको हमारे कांग्रेचुलेशंस अभिनंदन की फिर आपने कितनी सारी भगवत गीता का वितरण किया 56,000 भगवत गीता रीवो पंजाबी बाग वाह तो ये हर्ष और गौरव की बात है आपका गौरव भारतवर्ष का गौरव ग्लोरी ऑफ इंडिया इंडियाज ग्लोरी इसी में है जब गीता का वितरण होता है और वो प्रसाद का वितरण भी हो रहा है सब वितरण ही वितरण हो रहा है दिल्ली दिल्ली जो राजधानी है अब इसको धर्मधानी ऐसे प्रयास से धर्मधानी बन सकती है तो प्रभुपाद आप सभी से बड़े ही प्रसन्न गोपाल कृष्ण महाराज से भी बड़े ही प्रसन्न प्रभुपाद उनके अथक प्रयासों से बड़ा मंदिर और साथ में बड़े बड़े प्रचार के कार्य हो रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद की ख्याति किसमें थी प्रभुपाद थिंक बिग प्रभुपाद कैसे सोचते थे बिग थिंकिंग स्मॉल थिंकिंग प्रभुपाद को पता ही नहीं था तो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं तो मैं कह रहा था वैसे कि ये स्कोर्स तो हम करते हैं करने चाहिए लेकिन साथ साथ हमको थोड़ा अंतर्मुख होके हमारे अंतःकरण ये कुछ सूक्ष्म हमारी स्थिति या हमारा स्वरूप हमारा आत्मा उसकी ओर भी ध्यान देख के या शरीर से कितने भगवत गीता का बोझ ढो ढो के या वितरण कर करके कितने पसीने की बूंदे गिरी ये भी देखना चाहिए लेकिन साथ ही साथ जिन बूंदों की यहां जिक्र है वो बूंद भी लक्षण है रोमांच कंप अश्रु तरंग और स्वेद स्वेट पुनः वही बात है कुछ पसीना तो शरीर से निकलता है कोई बहुत ही कार्यकलाप या कोई शारीरिक परिश्रम से और दूसरे प्रकार का स्वेद पसीना भगवान के साथ हमारे मिलन के साथ भी स्वेद के बिंदु पसीने के परस्पिरेशन गोपिया या हरिदास ठाकुर या और सभी जो उच्च कोटि के भक्त है तो दो प्रकार का पसीना भी शरीर से निकलता है एक तो परिश्रम से और दूसरा भगवान के साथ परिचय होता है या भगवान के साथ मिलन होता है भगवान कुछ भाव जागृत हो रहा है तो और एक प्रकार के आंखों से भी अश्रु भी दो प्रकार के एक चिली भाव वाला अश्रु है दूसरा भक्ति भाव वाला अश्रु है और रोमांच भी शेर को आगे देखेंगे तो शेर को आगे देखते ही हम लोग कांपने लगेंगे और बाल रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नहीं, वो भी एक हुआ। और फिर भगवान के साथ जब मिलन होता है, भगवान का जब साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है, तो उस स्थिति में भी शरीर में रोमांच और आंखों में प्रेमाश्रु और स्वेद के बिंदु टपकने लगेंगे, शरीर लथ लथ पथ होता है उस स्थिति में, भक्ति भाव की स्थिति में। तो हमारे हमें ये दो दो बातों में संतुलन, एक हमारा प्रचार का कार्य भी हमें करना है और साथ साथ हमारे शुद्धिकरण का, चेतो दर्पण मार्जनम कैसे हो रहा है, उनसे ये कोई लक्षण भी हमें कुछ आ रहे हैं, हम श्रद्धा से क्या आगे बढ़ रहे हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं, क्या श्रद्धा से हम अब कहां रुचि है, रुचि के पहले नित्यम भागवत सेवया और निष्ठ की निष्ठा तक, श्रद्धा से निष्ठा तक पहुंचने का पहले प्रयास होना चाहिए हम लोगों का। और रुचि और भी ऊंची बात है, या भाव और प्रेम, ये जो हुआ क्या हमने कहा, कौन सा, श्रद्धा से निष्ठा, यस निष्ठा, तो निष्ठा तक पहुंचने का ये कि निष्ठा बीच में है, निष्ठा वो स्थिति है जिसको प्रभुपाद कहते इर्रेवोकेबल या इर्रिवर्सिबल। निष्ठा को जब हम प्राप्त करेंगे, निष्ठा वैसे हमारे श्रद्धा जब दृढ़ श्रद्धा होगी, आदौ श्रद्धा, शुरुआत में तो श्रद्धा है, लेकिन कई लोग वैसे भक्ति को बीच में छोड़ के अपने घर या जहां तहां जाते हैं, जिनको हम ब्लूप, क्या हुआ ब्लूप हुआ कहते ब्लूप, जैसे पत्थर को फेंकेंगे हम तालाब में तो आवाज कैसा आता है, ब्लूप ब्लूप, तो दोबारा व्यक्ति जब उसी समुद्र में सागर में स्वयं को कूदता है फेंकता है तो वो ब्लूप का आवाज है, ब्लूप वो ब्लूप हो गया। अभी ज्यादा प्रचार नहीं है, लेकिन हम जब ज्वाइन किए तो ये ब्लूप का प्रचार था, विदेश में ब्लूप हो गया, ब्लूप हो गया मतलब सागर में स्वाहा हो गया उसका अपना। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, और कौन चाहेगा कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करते ही रहे करते ही रहे, जन्म जन्मांतर के लिए, या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करके वहां भगवान की सेवा करते, कौन नहीं चाहेगा, कौन कौन चाहता है कि ऐसे हम सेवा करते ही रहे, कोई रुकावट कोई विघ्न कोई यू टर्न कोई चाहता है, कुछ लोग सोच रहे हैं, ठीक है वो भी अभी पूरा हो गया सोचना उनका, उन्होंने हाथ में, तो हम चाहते कि हम आगे ही बढ़ते जाए। तो वो निष्ठा वो हमारे श्रद्धा की स्थिति है, जिस श्रद्धा की स्थिति में वहां से हम फिर पीछे नहीं हटते, वहां से यू टर्न नहीं होता, वहां से हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। तो केवल श्रद्धा से काम नहीं होगा, जो श्रद्धावान भी है यहां एक उनको क्या होना होगा, निष्ठावान, केवल श्रद्धावान ही रहेगा, श्रद्धा से आगे बढ़ना होगा। तो श्रद्धा से आगे बढ़ने के लिए अदौ श्रद्धा, साधु संग, फिर साधु संग में हम लोग भजन क्रिया को सीखते हैं, हर रोज भजन क्रिया को सीखना है, भली भांति समझना है, ये शास्त्र है, शास्त्र सबसे कठिन शास्त्र अगर कोई है तो कौन सा है, ये अध्यात्म, अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म विद्या विद्यानाम सबसे अधिक क्लिष्ट कहिए, श्रेष्ठ भी साथ ही साथ ये शास्त्र है, इसको सीखना है। जिसको सीखने के लिए हम लोग ये जो विद्यापीठ है प्रभुपाद का, ये विद्यापीठ प्रभुपाद के मंदिर क्या है, एक एक मंदिर क्या क्या है, एक एक विद्यापीठ है श्रील प्रभुपाद का, एक एक मंदिर विद्यापीठ है। तो मंदिर केवल दर्शन के लिए ही नहीं है, या दर्शन मतलब केवल देखना ही नहीं है, दर्शन मतलब सुनना भी है। जैसे षड दर्शन है, अलग अलग छह जो फिलॉसफीज है उनको क्या कहते हैं, दर्शन। और फिर दार्शनिक, जिन्होंने दर्शन किया है या उस दर्शन के जो ज्ञाता है। तो यहां हम केवल राधा पारसार्थी का दर्शन ही नहीं, आंखों से जो ज्यादा देख नहीं पाते, दिखाती नहीं आंखें हमको अधिक, प्रभुपाद की जो विधि है भगवान के दर्शन की, वो कहते कान से देखो। प्रभुपाद का प्रस्ताव है भगवान को देखना है, कैसे देखो, कान से देखो, आंखों से। हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे उस शिष्य को जो क्लास को बीच में ही छोड़ के वो दर्शन के लिए चला गया, और फिर कुछ समय के उपरांत जब लौटा उसने शायद सोचा होगा कि मेरे गुरु महाराज कितने प्रसन्न होंगे मुझसे जब मैं कहूंगा कि मैं दर्शन करने गया था। तो भक्ति सिद्धांत बड़े ही नाराज हुए और उन्हें पूछा, बेटा शिष्य तुम्हारा आई एक्सरसाइज कैसे रहा, तुम गए भगवान के समक्ष, आंखें तुमने खोली और आंखें तुमने बंद की, कई बार किया होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईज, तुम्हारे आंखों की कसरत कैसी रही बता दो। तो ये नहीं कि कुछ लाभ है नहीं भगवान के दर्शन का, आंखों से देखने का, लेकिन अधिक लाभ तो वैसे कान खोलने से, श्रवण से। तो प्रभुपाद इस उद्देश्य से श्रवण के लिए इन मंदिरों की स्थापना, दर्शन और साथ में श्रवण। तो आदो श्रद्धा साधु संग, हरे कृष्ण आंदोलन ही ऐसे, ये विशेषता हरे कृष्ण आंदोलन की, जिस हरे कृष्ण आंदोलन में न तो केवल आरती हर रोज उतारी जाती है, हर रोज कथा श्रवण कीर्तन भी होता है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कभी सात दिन की कथा भागवत कथा रामायण कथा हो गई, होगी छुट्टी हो गई, अब अगली कथा अगले साल ऐसा। लेकिन प्रभुपाद नित्यम के रिमाइंडर की आवश्यकता है, नित्यम भागवत सेवया। तो आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, इससे क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति सात। तो आज के श्लोक में अब बचा हुआ तात्पर्य आपको कल पढ़ना होगा, क्योंकि ये मैराथन का समय है, आजीवन सदस्यता मैराथन अब प्रारंभ भी है। तो हुआ तो सीखने समझने की बात तो मुख्य बात या तात्पर्य तो ये है कि हम जप तो करते ही है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो इस उच्चारण के साथ या इस उच्चारण का नाम उच्चारण का फल या परिणाम, आंखों से प्रेमाश्रु और शरीर का रोमांचित होना और इस प्रकार हर्ष को प्रदर्शित करना, ये अगर नहीं हो रहा है तो कुछ समस्या है, ये जानना होगा। या हमारा अधिक, अगर हमारा हृदय अगर फौलाद का बना है तो शायद स्पेशल स्टील होगा, हमारा स्पेशल स्टील का बना हुआ है, तो इसीलिए पिघल नहीं रहा है। लेकिन प्रयास करने से अभ्यास है इन तो कौनते अभ्यास से, तो इस फौलाद को हमें पिघाल देना ही है। तो प्रयास अधिक प्रयास करना होगा, उन भक्तों को अधिक प्रयास करना होगा छोड़ना तो नहीं है। वह चैतन्य महाप्रभु उनका तो बड़े ही कम समय में ही उन्होंने दीक्षा ली गया में, ईश्वरपुरी से ये नाम मंत्र की दीक्षा हुई, और जाते जाते ही नाम को उच्चारण प्रारंभ हुआ। अब नदिया की ओर लौट रहे थे, जाते जाते उनके शरीर में सारा रोमांच और उनको हुआ, चलना भी मुश्किल, गिर जाते थे, उनके पैर लड़खड़ाते थे, गिर जाते थे, उठते थे, प्रेमाश्रु और शरीर कांपता था उनका। ऐसे पहुंच गए, बड़े मुश्किल से पहुंच गए, और वहां पुनः जब कुछ समय के उपरांत जब मिलन हुआ ईश्वरपुरी जी से, तो ईश्वरपुरी को पूछते हैं किब मंत्र दिला गोसाई, किब मंत्र दिला गोसाई, किब तार बोल, जपीते जपीते मंत्र करील पागव। हे गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र दिया है और कितना बल, कितनी शक्ति है इस मंत्र में, जपीते जपीते मंत्र मैं तो पागल हो गया, मैं तो पागल पगला बाबा हो गया। क्या किया आपने जादू, कौन सा मंत्र, कितनी शक्ति है इस मंत्र में। तो जिस मंत्र का चैतन्य महाप्रभु जब कर रहे थे, वही तो यही मंत्र है, हरि कृष्ण महामंत्र। वैसे कुछ लोग प्रभुपाद कहते हैं वो सब झूठ बात है, इस मंत्र का उपयोग करते 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 इस मंत्र की कुछ शक्ति कुछ क्षीण हुई है, ऐसा कुछ लोगों का प्रस्ताव। इस मंत्र की शक्ति कुछ घटी हुई है, 500 सालों से उपयोग हो रहा है ना। प्रभुपाद राइट्स, आई थिंक ये रामकृष्ण मिशन वाले या कुछ ऐसे कोई लोग है, कोई पार्टी के, बहुत उपयोग हुआ है, इसीलिए अब जो प्रेमाश्रु वगैरह है, रोमांच वगैरह होना है, अभी उतना नहीं होता हो पा रहा है, क्योंकि मंत्र थोड़ा बलहीन। तो ये बकवास है, क्योंकि प्रभु का नाम प्रभु है तो या क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशन्ति, कि यह कोई क्षीण होने की बात नहीं है। वैसे हर क्षण क्षण क्या होता है, आनंदम बुधि वर्धनम की बात, आनंदम बुधि वर्धनम, अम्बुधि और वर्धन, तो ये तो अनुभव के परे की बात है। वैसे कुछ 10 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले क्या हुआ, समुद्र ने भी अपनी क्या सीमा को पार करके, उल्लंघन करके आगे बढ़ा, मर्यादा को तोड़ी, ऐसा नहीं कर सकता थोड़ा समुद्र तो हुआ। लेकिन हम जिस समुद्र की बात करते हैं, ये तो तोड़ते ही रहता है ये। आनंद अम्बुधि वर्धनम, तो वही मंत्र है, वही सारे विधि विधान है जो परंपरा में हमें अब प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो अपराध है, नाम अपराध, इनको टालते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें जप करते ही रहना है। तो हर एकादशी को भी हम थोड़ा देख सकते हैं, दिल को टटोल के कुछ आत्म परीक्षण कर सकते हैं। यह हमको परीक्षण करने नहीं आता है तो हम औरों से पूछ सकते हैं, आप बताइए हमें, और भक्तों को अपना दर्पण बना के उनके समक्ष बैठो, फिर वो बताएंगे कि हम मुझमें कोई त्रुटि है, कोई दोष है, कोई मेरी साधना में, मेरी भक्ति में, इस प्रकार की पूछना। इसी को तो कहा है गुह्यम आख्यति प्रच्छति की बात, गुह्यम आख्यति प्रच्छति, और ये षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो निधाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ। श्रीमद्भागवतम की निधाय गौर प्रेमानंदे।